रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीजगी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का एक खजाना है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है।
अगर चल सको तो स्वयं ही चलो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न साथ हो कोई अकेले बढ़ो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से, तुम प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर बन सको तो पखेरु बनो, तुम प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं कभी पग, न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर, तुम अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो, तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ना हो साथ कोई अकेले पड़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। महानतम कार्य एकांत की अवस्था में होते हैं। जीवन का महानतम परिवर्तन मौन और एकांत की छत्र छाया में हमेशा होता है। भीड़ में परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन आवाज और मौन के अभाव में होता है। परिवर्तन मौन क्रांति है। संस्कारों का सूक्ष्म परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति है और उसके लिए बुद्धि चिंतन उतना ही सूक्ष्म चाहिए। मोटी मोटी जो परते हैं, दीवारें हैं चेतन और अवचेतन के बीच, जब तक वो दीवारें नहीं टूटती तब तक भीतर प्रवेश नहीं, और सारे शत्रु और सारा अंधकार और सारे विकार मन की अतल गहराइयों में छिपे हैं। चेतन पर ज्ञान है, चेतन मन के तत् पर सिद्धांत है, लॉजिक है, तर्क है, रीजन है, श्रीमत है, योग है, अमृत वेला है, धारणा है, सेवा है। परंतु विकार अत्यंत सूक्ष्म गुप्त और अंदर छिपे, भीतर की सफाई बाहर की सफाई हमने कर ली। कोई स्थूल विकर्म नहीं कर रहे, कोई स्थूल हिंसा नहीं, परंतु भीतर अभी भी राग और द्वेष उत्पन्न होते रहता है। विकारों को वहां से खत्म करना है जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं। दो कार्य है, एक जो ऑलरेडी है वहां पर उनका नाश करना, और दूसरा जो प्रतिपल नए नए बन रहे हैं उनको बनने ना देना। ये दोनों कार्य एक साथ चले। एक राजकुमार पहली बार अपने महल से बाहर निकला, घोड़े पर सवार नगर का परिभ्रमण करने लगा और पाया कि नगर के बाहर एक महात्मा प्रवचन दे रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, प्रवचन अत्यंत शक्तिशाली था, वैराग्य पर था। जीवन की व्यर्थता, जीवन का खोखलापन और जो पाखंड है उसको उजागर करने वाला था, और किस तरह सारे लोग भ्रमित होकर संसार में जी रहे या जीवन ढो रहे, इस विषय पर वो महात्मा प्रवचन कर रहे थे। और वो प्रवचन सुनते सुनते उस राजकुमार के मन में तीव्र वैराग्य का वेग जागता है। एक क्षण में उसे दिखाई देने लगता है संसार के वैभव और संसार के सुख और ये इंद्रियों के सुख केवल और केवल नरक के द्वार है। इनसे तृप्ति कभी नहीं हो सकती। अतृप्ति ही परिणाम है और वो प्रवचन सुनते सुनते उस राजकुमार में जीवन के सत्य को जानने की प्यास जागती है। ये प्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है। सत्य को पाना न पाना महत्वपूर्ण नहीं, सत्य को जानने की प्यास, जीवन का सत्य क्या है। आत्मा परमात्मा और सृष्टि चक्र की सूचनाएं पाकर सत्य की प्यास नहीं मिटती और वो अपना घोड़ा वही छोड़ देता है और निकल पड़ता है सत्य की प्यास को पूरा करने के लिए। वन में जाता है, वर्षों तक अभ्यास करता है, तपश्चर्या करता है, एकांत में और मौन में संसार से संबंध छूट जाता है और कई कई वर्षों बाद वो खुद एक तपस्वी बन जाता है। वो खुद एक साधु, योगी, सन्यासी, वैरागी, महात्मा बन जाता है। उसके मन में विचार आता है कि जिस महात्मा को सुनकर मेरे मन में प्रथम वैराग का वेग उत्पन्न हुआ था, जाकर उनका कम से कम धन्यवाद तो करना चाहिए। और वो उसी स्थान पर आता है, उसी गांव, उसी शहर के बाहर, तो देखता है महात्मा वही बातें सुना रहे जो उस समय सुना रहे थे और देखता है वहां लोग भी वही बैठे हैं जो वर्षों पहले बैठे थे और ये भी देखता है वो लोग वैसे ही सुन रहे हैं जब वर्षों पहले सुन रहे थे। उसे आश्चर्य होता है, इस महात्मा का एक वचन सुनकर मेरे अंदर ऐसा वैराग्य जागा और ये वही लोग हैं और आज भी वैसे ही बैठे हुए और वैसे ही सुन रहे जब तब सुन रहे थे। वो एक एक व्यक्ति के पास जाता है और हिलाता है, कौन हो तुम, पाषाण हो कि जीते जागते हो, क्या हो, कैसे लोग हो तुम, तुम्हें जरा परिवर्तन नहीं आया, अभी भी वैसे ही सुन रहे हो। महात्मा अब तक तो ये खुद भी महात्मा बन चुका है, बड़े बड़े बाल और दाढ़ी है। वो महात्मा कहते हैं, आप महात्मा जी आप हो कौन और ये क्या कर रहे हो। तब वो महात्मा, वो जो सन्यासी युवक, वो अपनी कहानी सुनाता है और तब महात्मा जी कहते हैं, इस संसार में कई तरह के लोग हैं, तुमने मेरे वचन को सुना और तुरंत धारण किया और उसकी खोज में निकल पड़े। ये सारे जो लोग हैं, ये सुनते तो है पर सुनना इनके लिए मनोरंजन मात्र है। ये सुनते तो है परंतु जीवन में उसे नहीं लाते। और यही संसार है। और वो महात्मा ये भी कहते हैं, जैसे एक माँ होती है और उसका कोई एक बेटा होता है, उसे बहुत समझाती है पर वो इतना ढीठ होता है कि कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ, फिर भी सुनता नहीं, सीखता नहीं। इस संसार में भी ऐसे लोग हैं जो प्रवचन सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, परंतु वो ज्ञान उनके भीतर कभी भी नहीं जाता, वो केवल सुनाने तक रह जाता है। वो केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास का विषय तक बन जाता है, विषय भर रह जाता है बस। इसके आगे वो बढ़ते नहीं, इसके लिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन के लिए आग चाहिए, तीव्र पिपासा चाहिए। माया जीत बनने की अगन ये जो लगन है आग की तरह तुम्हारे अंदर प्रज्वलित हो। लगन क्या हो? आग, अग्नि की तरह प्रज्वलित हो। जानना है बस, नहीं जानूंगा तो मर जाऊंगा, ऐसी आग। क्या है सत्य? इतना अमृत वेले उठे, इतनी मुरलियां सुनी, इतनी साकार अव्यक्त मुरलियां सुनी, पर परिवर्तन वाली चिड़िया कहाँ है? इतनी क्लासेस कराई, सुनी, इतने बड़ों के साथ रहे, भगवान के साथ रहे, फिर भी परिवर्तन कहाँ है? फायर, क्या चाहिए? फायर, एन इंटेंस फायर। ये मुरली ट्री है, इस मुरली में सात बातें। मुरली कितनी बड़ी है? इतनी, उससे भी छोटी,
इससे भी।
सात बातें। सबसे पहला योद्धापन, वॉरियर, द स्टेट ऑफ बीइंग अ वॉरियर। तुम रूहानी योद्धा हो, तुम रूहानी सेनानी हो, वॉरियर हो, ये भूलना मत। और योद्धा के मन में केवल दो ही बातें होती है, कौन सी? युद्ध और विजय, और कुछ नहीं। रूहानी योद्धा की हमने 16 निशानियां देखी थी पिछली पट्टी में। रथी होता है वो, नजरें सबके नीचे। रूहानी योद्धा अर्थात वो क्या होता है? रथी, रथ उसके वश में है, जितेंद्रिय है वो, राजा है। सदा युद्ध स्थल पर उपस्थित है, सदा युद्ध स्थल पर है, निर्भय है। युद्ध और विजय बस यही बुद्धि में है, दृष्टि में क्या है, वृत्ति में क्या है, बहुत सारी बातें थी। आप अपा कैसे देखता है, बिल्कुल आराम उसे पसंद नहीं है। जब तक युद्ध पूरा ना कर लूं उसे चैन नहीं है, वो आराम पसंद नहीं है, वो निर्भय है, बुद्धि में, वृत्ति में, दृष्टि में। वो नामधारी ब्राह्मण नहीं है, उसके लक्ष्य, उसके लक्षण क्या है, ये सारी बातें हमने देखे। हमेशा उसके साथ क्या होते हैं? शस्त्र होते हैं। आलस बिल्कुल उसे पसंद नहीं, आराम पसंद नहीं, शस्त्र से उसे बहुत प्यार है। और हमारा शस्त्र कौन सा है? ज्ञान। और इस शस्त्र को क्या करते रहना है? जब युद्ध ना हो तब धार लगाते रहना है, पता नहीं कब शत्रु आ जाए। भारी तलवार चाहिए, शत्रु को मारो तो पूरी गर्दन, ऐसा नहीं मारो तो खाली थोड़ा सा खून निकले इधर, एक साथ खत्म। जलालुद्दीन अकबर जब वो छोटा बच्चा होता है, पहला युद्ध उसका जब वो 13 वर्ष का होता है, हेमू के साथ उसका युद्ध दिखाया है, क्योंकि अभी तक वो तो छोटा है। उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई अचानक, और छोटा सा अकबर जलाल 13 साल का होता है जब उसे तख्त पर बिठा दिया जाता है। और पहला युद्ध जिसने उसके पिता को धोखा दिया था, हेमू उसके साथ होता है, हेमू पराजित हो जाए। वो इतना शक्तिशाली होता है, 10 हाथियों का बल जिसमें होता है। जब हेमू नीचे गिरता है तो बहराम खान अकबर से कहता है इसको मार दो। अकबर कहता है, जलाल कहता है मैं नहीं कर सकता ये। उसे याद दिलाता है तुम कौन हो, तुम्हें करना क्या, हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी है तो यहां से शुरुआत करो। और वो पहली तलवार जलाल की चलती है, उसका सर धड़ से, शत्रु को बख्शा नहीं जाता, शत्रु को मार दिया जाता है। तुम हो रूहानी योद्धे, अपने योद्धेपन को याद करो, निरंतर एक ही स्मृति रहे हम योद्धे, हमें लड़ाई करनी है और माया तो प्रतिपल है, इसके लिए प्रतिपल सजग, प्रतिपल होश, एक पल की बेहोशी और माया से पराजित, थोड़ा सा आलस माया से पराजित, थोड़ा सा अलबेलापन माया से पराजित। माया बहुत चतुर है, माया शक्तिशाली है, माया हमारी हर कमजोरी को जानती है। तो सबसे पहली बात इस मुरली में है वो योद्धेपन, ब्रेवरी, वैलर, योद्धापन। दूसरा, ये लगन कैसी हो माया को जीतने की, आग के समान। बस यही लक्ष्य है, इस माया को पराजित करना है। ये माया क्या है, माया के रूप क्या है, माया को कैसे परिभाषित करें, माया की क्या परिभाषा है। केवल ये कह देना देहभान माया है, कमी कमजोरी माया है, नहीं। माया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, अनिर्णय की अवस्था भी माया की ही स्थिति है, द स्टेट ऑफ इनडिसीजन, ये करूँ या वो करूँ, करूँ या ना करूँ, टू बी और नॉट टू बी। किसी के लिए ये माया है, किसी के लिए आलस माया, किसी के लिए अलबेलापन माया है, किसी के लिए भय माया है, किसी के लिए पुरानी यादें माया है, किसी के लिए कड़े संस्कार, किसी के लिए सब कुछ कर रहे फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये माया है। सारी धारणाएं हैं फिर भी परिवर्तन का नाम निशान नहीं है। किसी के लिए माया क्या है वही उसे पता नहीं, अज्ञात माया है परंतु रूप क्या है उसका पता नहीं। तो माया को जानना, समझना और इसकी क्या आग, अग्नि प्रज्वलित हो, ये इस इच्छा को कम नहीं होने देना। जो राजे होते हैं अगर उनकी हार हो गई तो अपनी पराजय को वो भूलते नहीं है, बदले की आग को क्या करते हैं, जगा के रखते हैं। अगर कोई घाव होगा तो घाव पे मलम पट्टी नहीं करते, उसको याद दिलाता है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। माया ने कितनी बार हराया, कितनी बार पराजित किया है। ठंडी हो गई, द फायर ऑफ वेंजियंस, द फायर ऑफ रिवेंज, बदले की आग, बदलना नहीं, बदला लेके दिखाना, किससे, माया से। कितनी बार उसने हराया, अब नहीं, अब की बार नहीं, नॉट दिस टाइम, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। तीसरा पॉइंट, साथ हमेशा तो हम कहते हैं फल खाओ, आज कह रहे फल खाना बंद। ये दूसरा पिक्चर है, सात प्रकार के फल हैं जो खाने नहीं है, उसको निकालो। ब्राह्मण जीवन में निषिद्ध फल, द फॉरबिडन फ्रूट, बाइबल की शुरुआत ही वहां से, एडम और ईव, ये फल खाना नहीं। भगवान ने दोनों को सृष्टि पर भेजा, एडम और ईव, और एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि ये फल नहीं खाना। पर वो जो सांप होता है ना, वो भरमाता है ईव को, हव्वा को, और कहता है खाओ खाओ खाओ, और वो खाती है। और उसको भी खिलाती है और दोनों नरक में गिरते हैं। वो फल है देवभान का। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है, सेवा तुमने की, अब दो चीजें तुमको मिलेगी, एक साधन और दूसरा महिमा। पर ये महिमा का यदि फल खा लिया तो फिर वो जो दूसरा फल है कैट वाला, कर्मातीत अतीन्द्रिय सुख संपूर्ण तपस्या वाला, ये फल नहीं खा सकेंगे। तो इसमें दो प्रश्न है, वो कौन से फल नहीं खाने वो बाद में। पहला तो जब प्रशंसा हो तब क्या किया जाए, स्वीकार कर लो। कोई कहे तुम तो एकदम दिखने में ही योगी दिखाई देते हो, तो क्या कहोगे, वो तो मैं बचपन से ही हूं, तुमने अभी जाना, बहुत लेट कर दिया तुमने। या कोई तुमको कहे कि तुम्हें देखकर मणि भाई ऐसा लगता है महाज्ञान के सागर हो, तो क्या कहोगे, ऐसे शर्मा जाओगे, आंखें नीचे, और किसी ने फर्स्ट टाइम ही महिमा की है तो एकदम जैसे दुल्हन होती है ना, उसकी आंखें ऐसे नीचे हो जाती है वैसे, क्या करोगे। 21 बातें बताओ, सबसे पहला अगर महिमा हो, अगर प्रशंसा हो तो क्या किया जाए। उसमें सबसे पहले तो उसे ऊपर भेज दो, ये हमारी है ही नहीं, किसकी है, उसकी है, ऊपर ट्रांसफर कर दो उसको। ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, जो विशेषता मुझ में है, ये हमारी विशेषता नहीं है, ये उसकी विशेषता है। वो चाहे तो विशेषता को जब चाहो तब वो छीन सकता है। ये संगम युग पर जो भी कार्य हो रहे हैं, सेवाएं हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, ये उसकी शक्ति है जो सेवा कर रही है। महाभारत के युद्ध के बाद जो दिखाया है, सारी शक्तियां पांडवों की खत्म हो गई, तब कहीं जाके पता चला पांडवों को ये सारा जो हो रहा था कौन कर रहा था, कृष्ण कर रहे थे। नगर में कुत्ते भौंक रहे हैं, लोग दरवाजों पर ताले लगा रहे हैं। युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है हस्तिनापुर में, ऐसा कैसे हो गया। अर्जुन को भेजते हैं, अर्जुन को भी वो भील लूट लेते हैं। वो दिखाया है आबू पर्वत के नीचे वो घटना होती है, ऐसा अर्बुदा, अर्जुन जो इतना शक्तिशाली, फिर जाके पता चलता है अरे कृष्ण तो गए। तो वो सारा कुछ जो पांडवों की शक्ति थी वो पांडव पति के वजह से थी। तो संगम पर जो सेवाएं हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, परमात्मा कृपा है, परमात्मा दया है, परमात्मा प्रसाद है, उसकी आशीर्वाद से हो रहा है। उसका वरदान यदि हट जाए तो तुम गिर जाओगे, और क्या सोचोगे। जब महिमा होते होने लगे तो वो करा रहा है, मैं निमित्त हूं, और क्या सोचोगे, बताते जो भगवान ने अवसर दिया है। और वैसे हमने पाप कितने किए, जन्म जन्म से तो पाप ही करते आए हैं, अब उसने ही अवसर दिया है एक आगे बढ़ने का। ये जो सेवा मिली है ये सेवा क्या है, ये जो सेवा मिली है ये क्या है, ये तुम्हारा सेवा तुम्हारा प्रायश्चित है। क्या है, प्रायश्चित। जो पाप किया है उस पाप को धोने के लिए एक टूल, एक माध्यम, एक साधन तुमको ये दिया गया है। अब उस प्रायश्चित कर रहे हो तुम, एक बहुत बड़ा पाप कर दिया किसने, फिर उसको कहा गया कि तुम अभी जेल में बंद हो जाओ, जेल में हो चक्की पीसो, और वो कहता है कि मेरे जैसा चक्की कोई नहीं पीस सकता। अरे तुम वहां क्यों हो, तुमने पाप किया है एज अ पनिशमेंट, और वो कहता है कि मैं, ये मेरी खूबी है, ये मेरी महानता है, है कोई मेरे जैसा चक्की पीसने वाला, वो भी जेल में। तो इसको क्या कहेंगे, मूर्खता। और क्या सोचोगे जब महिमा हो तब, हमने कहा 21 बातें, अभी 2-3 हुई है बस, निमित्त तो हो गए। वो महिमा कर रहा है, उससे सीखो कि हमें भी ऐसी महिमा करना सीखना है। इतनी बड़ी कोई बात है नहीं महिमा जैसी हम में, पर फिर भी वो कर रहा है, तो ऐसा हमें भी सीखना है। उस जो व्यक्ति महिमा कर रहा है उससे सीखो कि महिमा कैसे की जाती है, द आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन। ये भी एक सोच है। अगला, नेक्स्ट पॉइंट, मेरी महिमा नहीं है वो, उनका तो हो गया सुबह पहले। हाँ, हमारी परीक्षा है कि हम महिमा जब होती है तो कितने फूल जाते हैं, कितने अकड़ जाते हैं, हम कितने कमजोर हैं अभी कि थोड़ी सी महिमा क्या कर दी किसी ने, किसी ने बोल क्या दिया, तुम्हें तो देखने से ही ऐसा लगता है ब्रह्मा बाबा जैसी याद आती। जब तुम भाषण कर रहे थे तुम्हारे ऊपर ब्रह्मा बाबा दिखे। अच्छा, और कौन कौन दिखा, मम्मा भी दिखी क्या? तो उससे सीखना भी है। दूसरा, महिमा हो रही है तो हमें अपनी स्थिति को कैसा रखना है, स्थिर। निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ स्थित प्रज्ञ योगी की यह परिभाषा है। अगर महिमा उसे खुश करती है, आनंदित करती है, बटरफ्लाइज इन द एब्डोमेन इन द स्टमक, गार्डन गार्डन हो जाता है हृदय, अर्थात जब निंदा होगी तब दुख भी होगा, उदासी भी उतनी ही आएगी, उसनी उतने ही अनुपात में। और क्या सोचेंगे जब महिमा हो रही तो? ये थोड़ी ना कोई सच्ची महिमा कर रहा है, झूठी बटर फैक्ट्री, स्वार्थ है कोई, ऐसे थोड़ी ना कोई किसी की महिमा करता है। अभी महिमा कर रहा है, बदला भी तो लेगा महिमा का, काम निकालने के लिए, खुश करने के लिए कुछ होगा उसको। एक एक कवि एक राजा के महल में सुबह सुबह आ जाता है और राजा के की प्रशंसा में अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं, आप वो हो, आप वो हो, आप पर्वतों में सुमेरु हो, ये हो, ऐसे हो, रत्न हो, हीरे हो। राजा इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, वो महिमा सुनाते रहता है राजा की, और राजा सुनते जाते हैं और कहता है कि इतनी महिमा तो, मैं मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना महान हूं, तुमने रियलाइज करा दिया कि मैं कितना महान हूं, और इसी खुशी में तुमको 100 स्वर्ण अशर्फिया मैं देता हूं। भाषण पूरा होता है राजा का, वो खड़ा हो जाता है, फिर दूसरे लोग आने लगते हैं, वो उसको लगता है ये अशर्फिया कब मिलेगी, उसको लगता है शायद राजा भूल गया होगा बातों बात में, इतनी बातें होती रहती है राजमहल में। तो घर जाता है, रात भर सो नहीं पाता है, सुबह सुबह आ जाता है और याद दिलाने राजा को कि आपने कहा था वो अशर्फिया। वो राजा पूछता है तुम्हारे मेरी तुमने मेरी महिमा में क्या क्या कहा था, तो फिर से एक बार सुना ना। वो तो कहता है मेरी डायरी में, मैं भूल गया। वो तो मैं भी भूल गया तुमने की तारीफ, मैंने भी की तारीफ, खत्म। तुमने मेरी तारीफ की, मैंने तुमको बख्शीश दिया, आप कौन से अशर्फिया और कौन से क्या, दोनों ही झूठे हैं। हाँ, तो एक तो ये, अगला पॉइंट, जो आज महिमा कर रहे हैं वो कल निंदा भी करेंगे, जो आज स्तुति कर रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पब्लिक की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है, आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की 100 बातें हमें पता है अच्छी वाली, और कोई आके एक निगेटिव बात उस व्यक्ति के बारे में बता देता है तो उसको हम तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और ये 100 एक साथ कैंसिल हो जाती है, बस ये एक ही रहती है। और निगेटिव बातों के लिए हमें प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ किसके लिए चाहिए हमें, पॉजिटिव के लिए। किसी के गुण अगर कोई बताए कि ये बहुत ही अच्छा है तुरंत थोड़ी मानते हैं, जब हम देखेंगे तो मानेंगे। पर अगर कोई आके कह दे कि इसका कुछ तो गड़बड़ है,
अब वो क्या गड़बड़ है ये नहीं पता, पर मान तो लिया है पहले से कि गड़बड़ तो है। उसके आधार पर फिर आगे का
तो
ये एक और वो हमारी महिमा कर रहे तो हम उसकी महिमा करना चालू करते। अच्छा और बाबा की महिमा करना चालू करो और उसे भी याद दिलाना है कि ये महिमा मेरी नहीं है, उसकी है। और ये उन्नति में बाधा है। अगर कोई क्लास कराया और कुछ भी करा दिया आपने, कोई सेवा की या कोई अच्छा किसी का सहयोग कर दिया, किसी की मदद कर दी और उसने बहुत महिमा कर दी सबके सामने, और आप बस वही 10 दिन तक याद करते रहे, तो टाइम वेस्ट नहीं है क्या? तो महिमा सुन के खुश खुश होना अर्थात टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। और इसमें आप किस में जी रहे हो? अतीत में, वर्तमान में थोड़ी जी रहे हो। और उस महिमा के की वर्षा के बीच अगर निंदा हो गई अचानक से तो एकदम ही सीधा उदासी के गर्त में गिरोगे। और महिमा हमें बाह्यमुखी बनाती है। प्रशंसा होती है तो क्या होता है व्यक्ति? बाह्यमुखी। और कोई निंदा आके कर दे तो सीधा किसी से बात करने की इच्छा होती है क्या? एकदम चुप मौन और बाबा की याद में एकांत में चले जाने की इच्छा होती है। तो हर्ट हुए है, उदास हुए, पर लोगों को बताएंगे हम मौन में गंभीर योगी है, पर अंदर से दुखी। पर ये थोड़ी ना बता सकते, दूसरों को बताना थोड़ी होता है मैं हर्ट हुआ। लोग कहेंगे कैसे योगी हो तुम, ढोंगी। अपने योगी स्टेटस की भी तो थोड़ी लाज रखनी पड़ती है ब्राह्मण परिवार में, इसलिए ये भी एक पॉइंट। अगला, जब महिमा हो तो क्या करें? जैसे वो महिमा करते रहे उसे बस आत्मिक स्वरूप में देखते रहो, महिमा होती रहे, साक्षी हो जाओ, महिमा होते रहो उपराम हो जाओ, महिमा होते होती जाए डिटैच हो जाओ, महिमा होते जाओ सोचो ये मेरी हो ही नहीं रही, ये मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, उसके कान बंद करो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, इधर से सुन के इधर से निकाल दो। और भगवान क्या करता है जब उसकी महिमा होती है तो? खुश होता है क्या? बाबा आप ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो, अच्छा इतनी महिमा मेरी, क्या चाहिए बोलो तुम, सेंटर रिट्रीट सेंटर क्या कर दूं, घुटने का दर्द ठीक करना है, क्या करना है जल्दी बताओ। मैं तो पहली बार, बाबा भगवान कितना महिमा सुनता रहता है, भक्तों की दिन रात महिमा सुनता है, फिर भी अप्रभावित, महिमा उसे प्रभावित नहीं करती, डिटैच्ड है, डिटैच्ड। और योगियों का ये लक्षण ही है कि वो अप्रभावित अनटच्ड रहते। दूसरा, महिमा सुनने के बाद हम दूसरों को सुनाते रहते कि हमारा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, दूसरों को सुनाते, सेवा की, सेवा थी 5 मिनट की, फोटो लिए 50 और भेजे कितनों को, 10,000 को, हमने सेवा की है हमारे फोटो देखो, और उसका रिस्पॉन्ड भी करना, अगर नहीं किया तो उदास। तो एक है महिमा, एक दूसरा और एक पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ, अगर कोई महिमा कर रहा है और सच्चे दिल से कर रहा है तो उसकी महिमा को अस्वीकार भी नहीं करना है, नहीं तो वो उसे दुख भी होगा, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, परंतु वो हमें अभिमानी भी ना बनाए, प्रभावित भी ना करे, हमने उसे स्वीकार किया उसे भी खुशी होती। कई लोग बहुत सच्चे दिल से करते हैं, आभार व्यक्त करते कि हाँ ये है भगवान, हमारी महिमा को अगर हमने भगवान को बहुत प्यार से भगवान की सेवा नहीं, भगवान को ये किया है कि आपने बाबा मदद की, और बाबा कहे हैं ये मदद विदद मैं नहीं करता, ये ड्रामा अनुसार होती, तो हमको दुख होगा ना, क्योंकि उसने हमारी महिमा को रिजेक्ट कर दिया। किसी को बर्थडे में गिफ्ट जाके दो, ठीक है, और वो कहे ये घड़ी मेरे पास तो 10 पड़ी है, इससे अच्छी महंगी वाली, तो वो पता है, परंतु वो सुदामा है ना जो लेके आया है, वो उसका महत्व है, तो महत्व इनाम का नहीं है, प्रश्न था ना, उस प्रेम का है, उसकी भावनाओं का है। तो हमें परखना भी आना चाहिए कि जो महिमा कर रहा है कौन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो है, एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो महिमा ही करते रहते हैं दिन रात, हर एक की पकड़ पकड़ के महिमा करते हैं। वो द्वापर से जो हर राजा के महल में भाट होते थे उनका काम क्या था, वो उनका बिजनेस ही वो है, जो मिला उसकी महिमा, जो मिला उसकी महिमा। जब ऐसा कोई महिमा करे तो सुनो, अरे मणि भाई आपको हमने सुनो बहुत ही बहुत ही, पर वो थोड़ी देर के बाद अरविंद भाई के पास जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद इधर जाएंगे इधर जाएंगे, सबके पास में वही। तो ये भी सोचना है, आज मेरी महिमा कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये लोग उधर जाके उनकी सेम महिमा करेंगे या उससे दो तीन शब्द ज्यादा, तो मुझे उससे क्या, और क्या सोचेंगे। अपने स्वमान में रहना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। हम अपने स्वमान में हैं तो उसके सामने ये छोटी छोटी महिमा क्या है, ये टिमटिमाते दीपक, ये मुरली में आया है एक महावाक्य बाबा के, मनुष्यों की हुई महिमा क्या है, टिमटिमाते दीपक, ये तुम्हें रोशनी दिखाएंगे। ज्ञान सूर्य तुम्हारे सामने है, हाँ, ये एक दूसरा पहलू है। कोई हमारी विशेषता हमें सुनाता है और हम सफर कर रहे हैं सेल्फ डाउट से, सेल्फ डाउट, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यून भावनाएं हमारे अंदर, इतनी न्यून भावना भरी है, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे से नहीं होगा, जहां मैं जाऊंगा मुझे लेके मत जाया करो, जहां मैं जाता हूं वहां पर गड़बड़ हो ही जाती है, मनहूस, मैं मनहूस हूं। तो ऐसे लोगों की अगर तारीफ की जाए तो हो सकता है वो उनकी चेतना जागृत हो जाए, तो यहां तो जरूरी भी है, क्योंकि युवक जो है ना इस समय वो सेल्फ डाउट से सफर करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे एक एग्जाम दी, नीट एग्जाम दी, पीजी की या यूजी की, फेल हो गए, उनके साथ 10 लोग मिलके पढ़ाई कर रहे थे, सेम ट्यूशन जा रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ, उसमें से 9 पास हो गए, 1 फेल हो गए, क्या होगा इसका, कितना दुख होता है। तब उसको उस समय क्या है, ये एक एग्जाम जीवन को डिसाइड नहीं करती है, इसलिए हौसला कम नहीं होने देना, फेल तो फेल, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो महिमा की और बहुत सारी बातें हैं। तो आज का होमवर्क नंबर 1, अगर महिमा हो, अगर प्रशंसा हो, अगर स्तुति हो, और अगर स्तव गान कोई गाने लगे, महिमा कोई गाने लगे, आरती कोई करने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी कितनी बातें लिखनी है, 21 पॉइंट्स। एक पॉइंट ना मिले दूसरे से, वही वही घुमा घुमा के वही एक ही पॉइंट की 21 मत बना देना, भिन्न भिन्न हो, है या नहीं है, ये भी एक है। तुरंत अंदर जाए, अगर कोई कह रहा है कि आप तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, तुरंत अंदर जाना और देखना कि मेरे अंदर वास्तव में मैं डिसिप्लिन्ड हूं क्या, कल ही तो डिसिप्लिन तोड़ा था, कल ही तो तोड़ा था, इसको पता ही नहीं। तो वो ये भी एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। हाँ, ये भी है, हम कोई व्यक्ति को आता नहीं और उसको बोलो कि तुमको ये आता है, तो उसको सीखना ही पड़ेगा, उसको वो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबके सामने बोल दिया पर उस फंस गया बेचारा में भी उसकी जो क्षमता है वो बाहर निकल जाएगी। महिमा करने वाले की स्थिति, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो महिमा कर रहा है, महिमा करना इतना सिंपल काम नहीं है, महिमा करने के लिए खुद के ईगो को नीचे रखना पड़ता है और फिर दूसरे की महिमा करना पड़ता है। जो अहंकारी है वो कभी किसी की महिमा नहीं करता, ये भी आपने देखा होगा, जिसमें बहुत ईगो भरा हुआ है ना, अगर बहुत अच्छा किसी ने कोई काम किया, जैसे कोई जूनियर है और जिसने बहुत अच्छी सेवा की, तो उसको हाँ ठीक है ठीक है, हम तो इससे भी अच्छा करते थे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म ढेर सारे पहलू है। तो महिमा करो दूसरों की और सुनते हुए खुद की चेकिंग। तो ये हो गए ये पॉइंट, होमवर्क नंबर टू। अच्छा इसमें ये सब हो गया ना। तो सात प्रकार के फल है जो ब्राह्मणों को खाने नहीं है। पहला फल है कच्चा फल। कच्चा फल अर्थात सफलता। अभी अभी सफल सेवा की सफलता हो गई और खुश हो गए, तो सबसे पहला फल कौन सा नहीं खाना है? रॉ फ्रूट। रॉ डाइट नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कच्चा फल बिल्कुल नहीं खाना है। कच्चा फल अर्थात कच्चे फल में क्या क्या आएगा? एक तो अभी अभी सेवा की, अभी अभी मेवा मिला और उसकी खुशी, और वो खा लिया और स्वीकार कर लिया, दूसरों ने महिमा किया और स्वीकार कर लिया कि हम है, सफलता मिले, खुश हो गए। तो ये सब क्या है? कच्चा फल, ये फल नहीं खाना है। दूसरा फल, सड़ा हुआ फल नहीं खाना है। दूसरा कौन सा फल का नहीं खाना है? रॉटन फ्रूट अर्थात दैहिक आकर्षण। दूसरा फल कौन सा है? शरीर का आकर्षण। क्या है इस शरीर में, कौन सी ब्यूटी है, कैसी ब्यूटी है? ऊपर से नीचे तक एक बार आंखें बंद करके शरीर का अवलोकन करो और देखो कहां क्या क्या है। बौद्ध लिटरेचर में 31-32 टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटी, एक एक चीज अपवित्रता बताई है। ये बालों में कौन सा सुंदर है? नाखून, ये चमड़ी, ये लीवर, लीवर निकालो, ये किडनी निकालो, ये स्प्लीन को रखो, ये लंग्स को निकालो, हार्ट को निकालो, ये नाक में क्या भरा है अंदर? म्यूकस। ये मुंह में क्या है? पायोरिया, पूरा निकलता है दांतों से। ये कानों से क्या निकलता है? सारे छिद्र जो है, नलिया जो है, गंदगी ही निकलती है उसमें। उसमें कैसा कैसा सौंदर्य, सवेरे सवेरे शुभ शुभ बोलो, चलता फिरता शौचालय है ये देह, ये है शुभ वाणी, अमृत वाणी सुबह सुबह की। सुबह सुबह ही शरीर के प्रति वैराग का भाव उत्पन्न हो। हॉस्पिटल का बीच बीच में चक्कर लगाया करो, देखो वो टीपी वाले पेशेंट, देखो वो डायलिसिस के पेशेंट, वो कैंसर के पेशेंट। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां बर्न वार्ड होता है, जाओ वो बर्न वार्ड में कैसे चिल्लाते हैं, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता है, चेहरा जब खराब हो जाता है तब। वेयर इज द ब्यूटी? ब्यूटी इज बट स्किन डिप, बस ये चमड़ी तक है, भीतर कुछ भी नहीं है। तो दूसरा फल कौन सा है? सड़ा हुआ। चौथा कीड़े वाला फल। तीसरा जिस फल के अंदर कीड़े हुए अर्थात विकर्म है, वो सारे फल खाने ही नहीं है। जब पता है कि ये विकर्म है उसी समय अपने आप को जागृत करना है। श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या है, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, परमत क्या, छांटना है ये किस कैटेगरी में आएगा ये कर्म। हमने देखा उस दिन, हम कौन है निखिलेश भाई? इंजन। तुम्हारे पीछे कौन है? एक बार पीछे मुड़कर देखो, सारी दुनिया। परसों मुरली हमने देखी ना, आई एम अ स्पिरिचुअल वॉरियर, आई एम पावरफुल नॉलेजफुल गाइड, आई एम इंजन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम सेल्फ रिलायंट, सात बातें थी उस मुरली में। तो हम इंजन है, तुम एक एक इंजन हो, तुम्हारे पीछे सारी संसार की आत्माएं हैं, तुम जो करोगे तुमको दुनिया फॉलो करेगी। तो तीसरा फल कौन सा है? कीड़े वाला फल खाना ही नहीं है। चौथा फल, चुराया हुआ और उधार लिया हुआ फल। सुख दे दो, शांति दे दो, मांगते ही रहते हैं, या फिर इससे भी ज्यादा दूसरों की आइडियाज को चुराना, दूसरों की आइडियाज चुराना, दूसरे के विचार चुराना, या और उससे भी ज्यादा दूसरों के अनुभव। किसी ने सुनाया बाबा के साथ का अनुभव, वो कहीं और जाके सुनाना मेरे साथ का अनुभव। वो उसने सुनाया ऐसा ऐसा हो गया था तो बाबा ने मेरी एकदम मदद कर दी। अब फिर हम जाके सुनाएंगे दूसरों को कि बाबा ने मेरी ऐसी मदद की थी, की नहीं थी। तो ये क्या है, अनुभव की चोरी, अनुभव की चोरी, विचारों की चोरी, संकल्पों की, भावनाओं की चोरी, ये चोरी है एक तरीके से, प्लेगरिज्म कहते हैं उसको। टिप्स कुछ भी, हाँ अगर चोरी करो भी तो नहीं नहीं उसका नाम बताओ, ये उस भाई का अनुभव है, रेफरेंस दे दो चोरी करते समय। जैसे बुक्स होती है ना, उसमें नीचे रेफरेंस होता है, वर्ड ग्रोसरी होती है कि ये यहां से लिया, ये वहां से लिया, ये वहां से लिया। हाँ वो तो है, नाम तो उसका आगे होगा, महिमा तो उसकी होगी, ये तो है, पर उसमें भी सेवा है, दूसरों को आगे बढ़ाना ही, खुद आगे बढ़ना है। परंतु लोग को पता चलता है, अगर झूठा अनुभव सुनाओगे ना वो पता चलता है, पकड़ लेते हैं लोग, इतने मूर्ख नहीं है ब्राह्मण। दूसरों का अनुभव खुद का सुनाना, तो उधार लिया हुआ, चुराया हुआ, अगला छीना हुआ फल, दूसरों की सुख शांति छीनना, मेंटली टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना दूसरों को, अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को, या अपने सीनियर्स को भी, सीनियर्स को भी पाक पागल कर देते हैं लोग। तो उसको कहते हैं छीना हुआ, वो फल नहीं खाना है, किसी की खुशी छीन लेना, किसी का पुरुषार्थ ही खत्म कर देना, उसको ऐसी बातें सुना देना कि अगले दिन से इच्छा ही नहीं रही उसको, ना अमृत वेले की इच्छा रही, ना मुरली सुनने की, ना क्लास सुनने की, इतनी निगेटिविटी भर दी उसके अंदर यज्ञ के प्रति, टीचर्स के प्रति, स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के मन में सामने वाली टीचर के प्रति इतनी निगेटिविटी भर देता है कि अगले दिन से क्लास में आना बंद, गुट ऐसे गट अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, कुमार विद्रोह कर देते, क्यों, करने वाला कौन होता है, एक मास्टरमाइंड होता है, वही फैलाता है निगेटिविटी को। तो ये भी क्या है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा फल, छीना हुआ फल, ये भी एक फल है जो खाना नहीं है। अगला जो बाइबल में जिसका वर्णन है, द फॉरबिडन फ्रूट, देहभान का फल, कौन सा फल, द फॉरबिडन फ्रूट बाइबल में जिसका वर्णन है और जिसके लिए कहा है कि ये देहभान का फल है। तो कितने हो गए ऐसे, छह, सबसे पहला कच्चा, सड़ा हुआ, कीड़े वाला, चोरी वाला, छीना हुआ, अगला भीख मांगा हुआ फल, भीख मांगा हुआ, क्या करते हैं हम, भीख मांगते हैं, सुख दे दो, शांति दे दो, दूसरों के ऊपर सेंटर बन रहा है, सकाश दे दो, थोड़ी सी घुटनों में दर्द है कुछ करो, बीमारियां है, भीख मांगा हुआ फल, वो भी नहीं। तो ऐसे ये कितने हो गए, सात प्रकार के फल जो हमें खाने नहीं है। अभी मुरली की तरफ आ जाओ, कड़वा फल, अभी इसमें और बढ़ा सकते हैं एक तो, परंतु फल चाहे कैसा भी हो, वो तो कहते हैं जितना कड़वा होगा और उसमें ये सब है प्रोटीन्स और ये सब, मतलब तत्व, पौष्टिक तत्व, कड़वे फल में क्या आएगा, किसी की निंदा करना रादर, और चिंतन कर सकते हैं इसमें। अभी कहाँ थे हम, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, हाँ, झूठा फल, उधार लिया फल, चुराया हुआ फल, भीख मांगा हुआ फल, गिरा हुआ फल, बहुत सारी चीजें। वैसे गिरा हुआ तो अच्छा है, तोड़ा हुआ तो नहीं है। फिर निराधार पुरुषार्थ, अगला पॉइंट क्या है मुरली का, तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा हो, निराधार, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, साथ में मुरली क्लास, साथ में भोजन, साथ में नाश्ता, साथ में अमृत वेला, हम बाबा के कमरे में पहुंच रहे हो, मैसेज, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, एक सीट रखी है इधर, बाबा मिलन भी साथ में, एक सीट तुम्हारे लिए रखी है, क्योंकि साथ साथ बाबा मिलन करेंगे तो पावर थोड़ी ज्यादा आएगी, डबल पावर आएगी। उसमें से एक भाई है और एक बहन है, पवित्र प्रेम, साथ साथ बाबा को मिलके याद करेंगे। किसको? बाबा को। भाई बहन की दाल नहीं गलती। बारिश बहुत अच्छी है, ठीक है, बारिश बहुत अच्छी है, बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। जमीन भी बहुत अच्छी है, जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जमीन और बारिश मिलती है तो कीचड़ बनता है। भाई भी बहुत अच्छा है, बहन भी बहुत अच्छी है, अच्छा ही रहने दो। डिटैच्ड। दोष न ब्रह्मा कुमार का है न ब्रह्मा कुमारी का है, दोष उम्र का है, दोष हार्मोन्स का है। हार्मोन्स दैट हाइजैक्स द इंटेलिजेंस। रासायनिक तत्व निर्माण होते हैं शरीर में, विकार। ऐसे साइंटिस्ट ने कम से कम 100 केमिकल्स की खोज की होगी। क्रोध जागा कि एक विशेष प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है। काम विकार जगते ही एक विशेष रसायन उत्पन्न होता है शरीर में, और वो रसायन फिर अपना काम करता है, क्रोध विकार केमिकल, और वो केमिकल विकार को और बढ़ाता है। ये कुचक्र है, इसलिए काम से व्यक्ति छूट नहीं पाता है। काम विकार जागा लस्ट, लस्ट जागते ही एक केमिकल जागता है, ये केमिकल एक्साइटमेंट करता है, ये एक्साइटमेंट से वो विकार और प्रज्वलित होता है और ये चक्र घूमने लगता है। फिर यहाँ श्रीमत ज्ञान मर्यादा मुरली अव्यक्तवाणी अमृतवेला सेंटर मधुबन हो सेंटर हो, काम विकार किसी स्थान को नहीं जानता, उसे कोई मतलब नहीं है किसी स्थान से, वो अपना काम हर स्थान पर करता है, विकारों को स्थान से कोई लेना देना नहीं। तो इसका ध्यान रखना है, ये चक्र घूमने लगता है क्योंकि यहां साइकोसोमेटिक हो जाता है। वो व्यक्ति को समझता है ना बीड़ी छोड़ना चाहिए सिगरेट छोड़ना चाहिए, पर छूटती कहां है, क्योंकि केमिकल्स रिलीज होते, वो केमिकल्स खुशी दिलाते हैं, साइकोसोमेटिक हो जाता है वो डोपामिन इफेक्ट, यहां से डोपामिन निकलता है और वो और किसी चीज से नहीं निकलता है। जो काम में सुख मिलता है और कहीं नहीं है, जो बीड़ी में उसको मिलता है और वो कहीं नहीं है, उसके लिए उसको वही चाहिए, क्योंकि उसी से वो केमिकल की मात्रा डोपामिन की मात्रा बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में निकलती है और व्यक्ति गुलाम हो जाता है, चक्र घूमने लगता है गुल 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 गुल। तो पुरुषार्थ कैसा हो? निराधार। अगला योग बल का अभ्यास, योग बल और अभ्यास। जितना अभ्यास करोगे योग बल बढ़ेगा, बाबा ने कहा इसका प्रयोग करो। योग बल जहां स्थूल चीजों का प्रयोग करते हो वहां किसका प्रयोग करो? योग बल का। तो छोटी छोटी चीजों में योग बल का प्रयोग, जैसे सुबह उठना है 2 बजे, संकल्प करो योग का संकल्प कि मुझे उठना ही है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक, जैसे आज का होमवर्क है 21 पॉइंट्स लिखने हैं। एक है ठीक है सुन लिया, हो गया वहीं तो डिस्कस हो गया, तब क्या लिखना बाकी? लिखना है क्योंकि ये काम है आज का, गृह कार्य। अगला उपराम वृत्ति और लास्ट ज्वाला रूप दृढ़ संकल्प। इतनी सी मुरली है उसकी, ये 7 पॉइंट्स है। उपराम, उपराम क्या होता है? स्तुति सुनो तो उपराम हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। ये सब नीचे देखो, ये नीचे लोग स्तुति कर रहे हैं, जो ऊपर टोड रॉक पर बैठा हुआ है और नकी लेक पर बैठ के उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? इधर तारीफ कर रहा है, उधर झगड़े कर रहे हैं, उधर 2 माताएं लड़ रही है एक दूसरे के बाल पकड़कर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसको? कोई चने बेच रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। वो ऊपर टोड रॉक पर है, नकी पर लोग कोई घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, नथिंग। उपराम सबसे परे, मैं यहां हूं, इसको कुछ हो रहा है कुछ नहीं, हम ऊपर। और ज्वाला रूप का दृढ़ संकल्प, उस दिन भी लास्ट भट्टी में हमने एक प्रयोग किया था, श्वास लेना और छोड़ने के साथ क्या करना, संकल्प को प्रगाढ़ करने की विधि। श्वास लेते लेते श्वास अंदर खींच के रख देना और फिर संकल्प करना, और श्वास छोड़ देना फिर संकल्प करना, ये श्वास संकल्प को क्या करेगा? प्रगाढ़, शक्तिशाली। कुंभक, वो तो सबसे पावरफुल कुंडली, उसमें वही तो होता है। समाधि में क्या होता है, फाइनल स्टेज वही है, श्वास ही रुक जाता है योगी का, पर उसकी विधि है श्वास लेना छोड़ना, अंदर बाहर, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक, और फिर एक स्टेज वो आती है कि वो हट योग है, ये सारे हट योग में आता है, हट योग। तो ये ऐसी आज के पॉइंट्स है। तो आज होमवर्क नंबर 1 महिमा वाला और होमवर्क नंबर 2 ये झाड़ बनाना है, कौन सा, अव्यक्त मुरली ट्री, और उसमें ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, ना हो तो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण। किसी को अपना साथी बनाना अर्थात बंधन, ये मार्ग है स्वावलंबन का, परावलंबन का नहीं, आत्म अभिमान का या अकेले होने का, अकेले चलने का। साथी बनाया तो वह साथी ही बाधा बनेगा। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए, वही बीच पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसको, किसके उगाए उगाए, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ओम शांति।
अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगाए, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर युग सको तो युगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सही राह को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को उड़े, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम